परमात्मा परम पिता शिव परमात्मा ज्योति में है सारी शक्ति शिव ज्योति में है सारी शक्ति दिव्य गुणों से बने हम मोती दिव्य गुणों से बने हम मोती
शिव ज्योति में है सारी शक्ति शिव ज्योति में है सारी सुबह के इस सत्र के अंदर राजयोग की विधि से सिद्धि बहुत सुंदर सेशन है। आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे इससे पहले वाले सेशन में सभी बहुत रुचि से अभ्यास भी कर रहे थे और ध्यान से सुन भी रहे थे। उसका एक कारण था। क्या कारण था जी? सेल्फ मोटिवेटेड। और कोई कारण को दूर करना चाहते थे? और कोई कारण जी? जरूरत थी, स्वस्थ रहने की जरूरत थी। और कोई कारण? अपने शरीर से सभी को प्यार है, जान है तो जहान है। हमारे फौज में भी कहते हैं, वैसे देश पर शहीद हो जाओ परंतु जहां तक हो सके पहले खुद को बचाओ। यदि हम खुद ही नहीं रहेंगे तो राष्ट्र की सेवा कैसे करेंगे? तो हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, सभी अवेयर हैं, इसलिए हमने देखा सभी बहुत गहराई से पार्टिसिपेट कर रहे थे। पर बॉडी के साथ साथ एक और चीज है जो इस शरीर को चला रही है, वो है जो हमने यहां आकर के बहुत गहराई से समझा। नहीं तो सुना तो था लेकिन इतना अनुभव शायद नहीं किया था। लेकिन यहां आकर हम हर सेशन में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र सुन लेते हैं और वो है सोल, आत्मा। अगर आत्मा बॉडी में ना रहे, बॉडी बहुत हेल्दी वेल्दी हैप्पी सब कुछ, लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। सबको मालूम है। तो आज हम उस विषय को ले रहे हैं जिसमें आपका बहुत कॉन्शियस है आप, कि हम तीन दिन से यहां सुन रहे हैं मेडिटेशन सेशन में, मेडिटेशन की टेक्निक, पहले दिन हमें बताया गया कि आप आत्मा हैं, दूसरे दिन हमें समझाया गया कि हमें कनेक्ट किनके साथ होना है, वो परमात्मा कौन है, वो सुपर पावर कौन है जिनके साथ कनेक्टिविटी करनी है, और तीसरा राजयोग की हमारी टेक्निक क्या है, विधि क्या है। अभी तक तो हम यही समझते आ रहे थे कि जो हम पूजा पाठ आराधना या हम गुरुद्वारे में जाकर शब्द पाठ या हम मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करते या हम चर्च में जाकर प्रेयर करते, कोई भी टेक्निक अपनाते थे, माना वही सबसे फाइनल है, बिल्कुल सही था, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे भी आगे एक स्टेप और आगे, उसके बाद का स्टेप, वहां तक है पढ़ना, उसके बाद है उस पढ़ाई से कनेक्ट होना। लेकिन अब एक प्रश्न आता है कि मैं ये मेडिटेशन क्यों करूं? जो हम कर रहे हैं क्या वो सफिशिएंट नहीं है? अपने आप से ये प्रश्न का उत्तर लें कि जो अब तक हम करते आ रहे थे वो करें आप, बिल्कुल भी उसको छोड़ना नहीं है कि हम यहां से जाएं तो वो अपना सिस्टम छोड़ दें, भले रखें, लेकिन ये मेडिटेशन टेक्निक को फॉलो करें एडिशनल, तो क्यों करें? उत्तर देंगे तो अच्छा रहेगा। कोई ना कोई प्राप्ति, जब हमें बेनिफिट्स मालूम होते हैं तब आप वो करना चाहेंगे। तो आज के हम इस सेशन के अंदर राजयोग से होने वाली प्राप्तियां, जिसको पावर्स का नाम दिया, हम उनके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। यदि हम पावर की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो सबसे पहला ध्यान हमारा कौन सी शक्ति पर जाता है? जी, विश्व। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताना, क्योंकि अभी इस कैंपस के आधार से और इस जगह का प्रभाव से नहीं बोलना, वास्तव में जब हम इस कैंपस से बाहर भी चले जाएंगे तब अगर पावर की बात आएगी, शक्ति की बात आएगी, तो पहला ध्यान मन। पक्का? कहीं मनी पावर तो नहीं है, है कि नहीं? आज के समय में हम यदि पहला ध्यान लगा देखते हैं तो किस पर जाता है? कोई यहां पर रिटायरमेंट के नियर अबाउट बैठे हो, वो पहले से प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना है, पैसे को कहां कहां एडजस्ट करना है, फिर उस पैसे से पैसा कैसे बनाना है, उस इन्वेस्टमेंट से कैसे आगे बढ़ाना है? तो आज के अगर आर्थिक युग में देखें तो पावर शब्द को हम सबसे पहले कहां मानते हैं? कहते हैं नोटों के रेल पेल से अच्छे अच्छे काम की गाड़ी चल जाती है, और चंद कागज के टुकड़ों ने पिछले दौर में रंग क्या बदला, अच्छे अच्छे लोगों का रंग बदल गया, और रंग बदला ही नहीं साहब, चेहरे का रंग भी उड़ गया। तो ये बहुत बड़ी पावर है आज के समय में, और वो कौन सी? धन की पावर। लेकिन उसके साथ साथ एक और पावर है हमारी फौज में, जो है वो है कौन सी? मैन पावर। अगर धन के साथ में हमारी अपनी व्यक्तिगत समूह ना हो, लोग ना हो, तो हम काम फतेह कैसे कर सकते हैं? और मैन पावर के साथ साथ मसल्स पावर भी, जिसका हम अभी अभ्यास कर रहे थे, कि हम अपने आप को फिट एंड फाइन मसल्स पावर को कैसे मेंटेन रखें। और इसके साथ में एक और पावर आती है हमारी फौज की, वो कौन सी? पावर ऑफ वेपन्स। लेटेस्ट टेक्निकल जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, हम चाहते हैं कि हमारे पास भी वो सब उपलब्ध हो और वो वेपन पावर हो। कई बार हम सिपाहियों से मिलते हैं, वो कहते हैं साहब ये तो पुराने जमाने की हमारे पास राइफल है, ये तो इतना धुआं भी कर देती है। मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी जो आधुनिक हो, परंतु याद करें ये तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए तब इस पावर की डिमांड करने लगे। जब हम बच्चे थे और स्कूल के अंदर जाते थे तो एक प्रेयर आती थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता। आगे बोलें, जोर से बोलें, वो लाइन शुरू से बोलें सभी, इतनी एक साथ मिलके बोलें, बहुत अच्छा लगेगा। सभी सीधे बैठ जाएं, ये क्या चीज था, ये शक्ति कौन सी थी? इस शक्ति को हम कह सकते हैं विल पावर, जो मन की शक्ति की बात थी, जो अभी अभी आपने ही अपने मुख से बोला। उस समय हमने ये नहीं कहा था धन की शक्ति देना दाता, तन की शक्ति देना दाता, वेपन्स की शक्ति देना दाता, उस समय हमने नहीं कहा था। वेपन से तो हमें मतलब ही नहीं था, धन की शक्ति पापा जाने, पिताजी जाने, वो अपने आप हमारी पूर्ति करेंगे, वो चाहे माँ लक्ष्मी के पास जाएं या कहीं भी जाएं। और तन का ध्यान हमारी माँ रखती थी। हमें तो एक चीज का प्रेयर में मालूम था और वो थी मन की शक्ति, जिसको हम विल पावर कहते हैं। अब ये विल पावर क्या चीज है, विल है कहां पर? क्योंकि आप एक एक स्टेप क्लियर करते जाएंगे आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जी। ये मन की शक्ति कहां है, कोई बताएंगे? और बहुत अच्छा बताया, हां जी। और मन की शक्ति कहां है? ओके, माथे में है। और कहां है जी सर? जी, थॉट प्रोसेस, थॉट, मन थॉट करता है, पर मन कहां है? तो देखिए, जो सोल कॉन्शियसनेस है, आत्मा, उसकी ही तीन शक्तियां बताई थी पहले दिन। उनमें था एक मन, दूसरा था बुद्धि, और तीसरे हमारे कर्म, संस्कार या हैबिट्स, जो कि इस पिक्चर में भी दिखाया, हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जोड़ता है, हमारा ही अपना मन। और यदि मन कमजोर है तो चाहे एक व्यक्ति 6.5 फुट का क्यों ना हो, 6 फुट का क्यों ना हो, खूब ताकतवर, हेल्दी वेल्दी क्यों ना हो, लेकिन वो वेपन चला पाएगा? और चलाएगा तो भी क्या उसका निशाना लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए उसे मन से भी दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। फौज ने हमको यहां क्यों भेजा है, इतना आप सबके ऊपर खर्चा करके यहां क्यों भेजा है? ताकि यहां फिजिकली फिटनेस की तो बात इतनी नहीं है जितनी मन के तंदुरुस्ती की बात है। मन विल पावर माना दृढ़ इच्छा शक्ति। और जब शक्ति की बात आती है तो हम लोग अभी आने वाले समय में किसकी आराधना करेंगे? शक्ति के लिए। शक्ति का स्रोत किसको माना? उस सुपर पावर को। जब तक हम उस सुपर पावर से कनेक्ट नहीं होते तब तक वो जो पावर आनी चाहिए वो हमारे पास नहीं आ सकती। जिस तरह से बैटरी के अंदर पावर उसकी अपनी है, लेकिन यूज करते करते डिस्चार्ज हो गई, अब उसे दोबारा से रिकनेक्ट करते और वो दोबारा से रिचार्ज हो जाती है। तो जब तक हम अपने आप को, हम कौन, हम अपने आप को इस शरीर के अंदर एक पॉइंट ऑफ लाइट, और जैसे एक पॉइंट ऑफ लाइट समझा, एक बेनिफिट तो सबसे अच्छा होगा, कौन सा? बस चाहे आप कुछ मत करना, चलते हुए भी एक बार अपने आप को कह देना कि आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट। तो पॉइंट ऑफ लाइट कहते ये 70 kg कम हो गया कि नहीं हो गया वेट, और उस इस इन कंधों पे अगर कोई वेट भी उठा रखा है तो वो वेट भी कम हो गया, और यहां पर अगर वेट है तो कई बार वो 70 kg से भी ज्यादा, 7000 kg से भी ज्यादा का वेट कहां होता है? यहां होता है। कहते आज मेरा माथा भारी है, ये नहीं कहते आज मेरा हाथ कंधा पीठ भारी है, नहीं, आज मेरा माथा भारी है। इसका मतलब यहां वो पावर रहती है जिसके ऊपर लोड है, जो आज अभी डिसकनेक्ट है, अगर उसको पुनः कनेक्ट कर दिया जाए उस सुपर पावर के साथ अर्थात परमात्मा के साथ, तो वो कनेक्टिविटी जिसको कहा, तस्वीर में दिखाया कि आत्मा का, उस परमात्मा के साथ जुड़ना, यही सबसे श्रेष्ठ राजयोग है। बाकी सब योग हैं, योगासन है और विधियां हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो योग बताया, योगा राजयोग, और वो है स्वयं को परमात्मा से जोड़ना। जहां शक्ति की बात आती है तो हम पहला नाम किसका लेते हैं? दुर्गा माँ का, अष्टभुजा धाती। अब आप सोच के देखें, 8 भुजा वाली कोई लेडी हो सकती है? हो सकती रही होंगी मे बी, बट प्रैक्टिकल में क्या लगता है? हम कहते हैं ये आर्म्स है, भुजा है, भुजा माना पावर, सहयोगी, जो बहुत अच्छा मित्र होता है उसके लिए कहते हैं ये मेरा राइट हैंड है, इवन लेफ्ट हैंड भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? राइट हैंड है। तो 8 भुजाएं मल्टी टाइम्स टास्क को संपन्न करने की क्षमता, जबकि रावण के पास तो क्या था? 10 शीश थे, परंतु 10 गुना दिमाग होते भी, 10 सिर का मतलब 10 टाइम्स एक आम आदमी की तुलना में 10 गुना ज्यादा दिमाग होते भी क्या पाया? लास्ट क्या हुआ? विक्ट्री? डेफिनेटली हार हुई ना। आज के समय में अभी आप प्रैक्टिकल देखना, हमारी जो जनरेशन है उनके पास दिमाग में कोई कमी नहीं है। आपको मोबाइल के एप्स लेटेस्ट शायद पता हो या ना हो, उनको मालूम भी है, वो डाउनलोड भी कर चुके होंगे और वो यूज भी कर सकते हैं। आप एक प्रश्न करें, आपने ऐसा क्यों किया, वो 10 टाइम्स आपको उसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? 10 गुना ज्यादा जवाब, और बिल्कुल आर्ग्यूमेंट के साथ। पर अगर आप उनको ये कहें कि बेटा एक गिलास पानी ले आओ तो सही से बोले, अच्छा से उत्तर दीजिए, ज्यादातर क्या आंसर आता है, आप ले आओ ना। मतलब करने की क्षमता कम और सोचने की क्षमता ज्यादा। दिमाग तो ज्यादा यूज कर रहे हैं, पर उस यूज करने वाले दिमाग को प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे। तो अगर एक्सेस एनर्जी वर्किंग में ना आए तो विटामिन अगर आवश्यकता से अधिक मिल जाए तो क्या होगा, उसका भी साइड इफेक्ट है। तो आज हम राजयोग से, और राजयोग कुछ और नहीं, सिर्फ आपका एक थिंकिंग प्रोसेस है, आपको एक तरह से डिफरेंट वे से सोचने की कला है, जो अब तक जिस स्टाइल से सोचते आ रहे थे उसको थोड़ा सा चेंज करना है। पानी के डायरेक्शन को बदल देंगे तो बहता पानी एक दरिया बनकर के प्रॉपर हमें बेनिफिट्स देगा, नहीं तो ऐसे ही हवा में ऐसी रस्तों पे बह रहा था। तो सबसे पहली पावर जिसको हम कहते हैं राजयोग से प्राप्त अष्ट शक्तियां, और उस अष्ट शक्तियों में सबसे पहली पावर, पावर टू विड्रॉ, ये हमारे फौज के लायक है या नहीं? हमें तो मरना और मारना दो ही चीज सिखाई जाती है, मारो या मर जाओ देश पर। परंतु याद होगा आपको, कभी कभी सिचुएशन को देखते हुए थोड़ी देर के लिए विड्रॉ भी करना पड़ता है। गुरलिया युद्ध, गुरलिया मालूम है ना, किनका था? शिवाजी। उन्होंने ये टेक्निक अपनाई कि कई बार थोड़ा सा दो कदम पीछे हटने में भी फायदा है, दोबारा अपनी एनर्जी को बढ़ा करके फिर वापस आए और फिर सामना करें। इसके लिए प्रकृति ने एक बहुत सुंदर जीव हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर रखा है, कौन सा जी? कछुआ। क्या करता है कछुआ, क्या करता है कछुआ? बहुत सुंदर एक छोटा सा मुझे मिला, मैंने एग्जाम्पल रखने के लिए कोशिश की कि ये जब चाहता है तो बाहर अपने आता है, और जैसे ही उसको कोई लगता है कि कुछ भी अटैक हो सकता है या थोड़ा भी उसको लगता है अब जरूरत नहीं है, तो वो अपने ही पार्ट्स को समेट कर क्या कर लेता है, वापस अपने उस शेल के अंदर आ जाता है। आज हम सबको भी परमात्मा ने एक बहुत सुंदर शेल दिया हुआ है, कवच दिया है, और उसके अंदर माना अंतर्मुखता की ओर आना, ये अपने आप में क्या है, पावर टू विड्रॉ। अब अपने आप से एक सवाल कीजिएगा सभी, हम ज्यादा वाचा में आते हैं, बोलने में ज्यादा आते हैं, या शांत रहने में ज्यादा रहते हैं दिन भर के अंदर? अच्छा, बोलने से एनर्जी जाती है या आती है? हम सबको मालूम है सुबह से लेकर के रात तक, जबकि नेचर ने भी, प्रकृति ने भी, ध्यान से देखिएगा, आंखें हमें दो दी हैं, कान हमें दो दिए हैं, हाथ पैर दो दो दिए हैं, पर मुख एक दिया है। नेचर ने भी कि सुने दुगना, देखे दुगना, लेकिन बोले आधा, हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर स्लोगन है, चाहे आप इसे नोट कर सकते हैं, कम बोलो। क्या स्लोगन है? इसीलिए आप लोग बोल ही नहीं रहे। बोले, रिटर्न में बोले, कम बोले। पर ऐसा भी नहीं कि जब बोले तब बम्ब सा बोले, गोली सा बोले। कई लोग कम तो बोलते हैं पर जब बोलते हैं ना तो समझ जाते हैं कि आज ये कम बोल रहा है तो जरूर बम। ऐसा घर में होता है ना कई बार, जिस दिन कम बोलना हो रहा है साथी का तो देयर इज समथिंग। नहीं, कम भी बोलना है और धीरे बोलना है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे बोलते बोलते ऐसी गहरी बात सरका जाते हैं कि सोचते रहो, ओ माय गॉड, अच्छा तो ये वो बात कह गया, अब समझ आई। तो कम बोलो, धीरे बोलो, और धीरे बोलो के साथ साथ मीठा बोलो। कहते हैं कि जो कड़वा बोलता है साहब, उसका तो गुड़ भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। वो इतना मीठा बोल के कहता है कि कोई बात नहीं ना, पैसे ही तो नहीं है, आप लेके तो जाओ साहब, बढ़िया वाली मिर्च चाहिए, बाहर से मंगाई है, आप इसको एक बार यूज करके देखिए। क्या किया उसने, क्या किया उसने, मीठा बोल के मिर्ची भी बेच दी, और कड़वा बोलने वाला कहता नहीं लेना तो चलो आगे, तुम्हारे बस का है ही नहीं खरीदना, इतना मोल भाव कर रहे हो तो आप तो उसकी दुकान पर नहीं जाएंगे, पर चार और को भी कहेंगे इसके इसके दुकान पर ना जाए। तो अंतर्मुखी होने के लिए सबसे अच्छी चीज है कम बोले, नेक्स्ट धीरे बोले, नेक्स्ट मीठा बोले, पर सोच के बोले। 100 बातों की एक बात सोच के बोले। कहते हैं लंबी जबान और लंबा धागा, सुई में धागा होता है ना, तो लंबा धागा और लंबी जबान कब अटक जाए, कहां उलझ जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए बेहतर है कि हम सोच के बोले तो हम कहीं भी फंसेंगे नहीं। क्या कहते हैं, ये जबान फिसल गई। सब फिसल कैसे जाती है, रहती तो वही है, 32 दांतों के बीच में रह के भी फिसल जाती है। माना 32 पहरेदार बैठे हैं एक के, तो जेड सिक्योरिटी के बीच में से भी। इसका लिए सबसे अच्छी चीज है हम अपने आप को एक कछुए की तरह मन और बुद्धि को समेटे। जुबान की भी बड़ी बात नहीं है, सारा काम दिमाग का है और दिमाग में मन का है। मन ज्यादा चलता है ना तो वो जीहा को भी चलाता है, और अगर मन एकाग्र है तो आप ज्यादा बोल ही नहीं पाएंगे। आप इसका प्रैक्टिकल देखिएगा, आप जब यहां से मेडिटेशन करके बाहर निकल रहे हो, सुबह के मेडिटेशन में आए थे सभी, आए थे, अब आप तुरंत उसके बाद आपसे कोई बात करे, आप बात कर पाएंगे? थोड़ा थोड़ा जोर लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो आप यहीं से इस चीज को चेक कर सकते हैं। इसका एक हमने एग्जांपल नेवी वालों के लिए भी बहुत अच्छा लिया, होंगे यहां पर बैठे होंगे, अगर तूफान आ जाए तो शिप को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, आप ओपोजिट में लेके जाएंगे तो आपको इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी कि शायद हो सकता है उसके परपंचे ही उड़ा दे। आप सेम डायरेक्शन में जाएं तो पता नहीं कहां का कहां बहा दे। पर उसका जो मिडल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो सबसे ज्यादा कूल एंड काम है। तो हमारी इस सब का सेंटर पॉइंट हमारा अपना मन। जब भी कभी कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए, मन मेरा मंदिर, दिया इसकी बाती, कि आप अपने मन से उसके उत्तर मांगे। और एक इसके साथ साथ और सबसे बड़ी जो क्षमता चाहिए वो है सुनने की क्षमता। आप में से कोई फर्स्ट टाइम यहां आए हूं, सर थर्ड रो में, यू मिडल, एक बार आप आए थर्ड रो, यस, आप एक माइक दे सकते हैं इनको, पॉसिबल है? एक मिनट के लिए आप पास में आ जाए स्टेज के आगे की तरफ। हम आपसे कुछ पूछे, आप सभी भी अलर्ट रहे, कहीं भी किसी का प्रश्न आ सकता है, कुछ पूछे, छोटी छोटी स्पेलिंग्स पूछते हम आपसे, आप उसमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना और फास्ट फास्ट आंसर देना, ठीक है? योर नेम,
कैलाश,
नेम की स्पेलिंग, स्पेलिंग ऑफ द नेम,
के ए आई एल ए एस,
व्हाट आई एम आस्किंग, आई एम आस्किंग द स्पेलिंग ऑफ नेम, एन, नहीं नहीं सर ठीक बोले, उन्होंने अपना, यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम जो सुन रहे हैं वो हम सही सुन पा रहे हैं। हमने इनसे पूछा स्पेलिंग ऑफ द नेम और इन्होंने स्पेलिंग बताई कैलाश। हमने तो कैलाश की स्पेलिंग, ताली तो बजा सकते हैं। चलिए हम आपसे फिर एक कुछ पूछते हैं, एक मौका तो और देते हैं। फैन, स्पेलिंग बताते जाइए, फैन,
एफ एन,
फ्लोर,
एफ एल ओ, एफ एल ओ डब्ल्यू,
डोर,
डी ओ आर,
पेन,
पीई एन,
पेंसिल,
पीई एन,
मेन,
बी एल,
मेन,
एम एन,
वुमेन,
डब्ल्यू ओ,
वाटर,
डब्ल्यू ए टी आर,
कंप्यूटर,
COMPUTR,
wrong,
COMPUTR, computer,
wrong,
COMPUTR,
sir I am asking the spelling of wrong, जोरदार तालियां बजाएं, thank you, clear हुआ ना? सच में हम सुनते हुए भी बहुत सारी बातें, हमने तो इनसे कहा ही नहीं था कि राइट स्पेलिंग बताना, सर कहा था कि आपने राइट राइट स्पेलिंग बोलनी है, बिल्कुल रॉन्ग मत बोल देना, कहा था, हमने तो सिंपल कहा था कि आप स्पेलिंग बताएंगे, और कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं उसमें कोई स्पेलिंग का मतलब भी नहीं है, सेंस समझ आना चाहिए। तो हम तो इनसे रॉन्ग की स्पेलिंग पूछ रहे थे। तो अगर जीवन में हमें अपनी शक्तियों को, ये बहुत प्रैक्टिकल है, एकाग्र करनी है, संचय करनी है, तो सुनने की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ाएं। अक्सर करके क्या होता है, घर में भी मैडम ने कुछ कहा, क्योंकि यहां सारे सर बैठे हैं ज्यादातर, तो मैडम ने कुछ कहा, आपको मालूम है ये वही बोलेगी जो रोज बोलती है, हाँ हाँ मुझे मालूम है, तो आपने क्या किया, उसको रिसीव नहीं किया, नहीं किया ना ढंग से। सर ने कुछ बोला तो, बॉस ने कुछ बोला तो 100% है ना। घर की कितनी इंपॉर्टेंट, चाहे मेडिसिन भी लानी हो तो भी हमसे क्या हो सकती है, शायद, शायद नहीं करेंगे पर शायद एक परसेंट प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर बॉस ने ब्रेड का पैकेट भी बोला तो श्योर। तो वहां हमारी सुनने की पूरी पूरी कैपेसिटी थी, यहां हमारी सुनने की कैपेसिटी बंद, क्योंकि हम वहां इतना सुन के आ चुके हैं कि लगता है अब यहां तो कोई कुछ बोले नहीं, और वो सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं तो वो भी तो किसी से कहेंगे। तो मेडिटेशन के माध्यम से, क्योंकि हमने ये सोच लिया कि मैं सुबह से सुन रहा हूं, वो प्रेशर लेने से, जबकि सुनना तो एक काम है, मोबाइल पे चाहे आप एक फोन करें चाहे 100 फोन करें बराबर कर सकते हैं, तो ये तो हमारा एक पार्ट है इस जॉब का। पर हमने, क्योंकि ये बॉस की बात है, ऐसा सोच के किया, इसलिए वहां ओवर अटेंशन और यहां है ना, तो बैलेंस नहीं है ना, और बैलेंस होना नहीं तो क्या होगा, जो जिनके लिए हम जी रहे हैं उन्हीं के लिए तो ये सब कर रहे हैं, और उन्हीं से ही हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लिसनिंग की हमारी कैपेसिटी को बढ़ाना, उसके साथ साथ हम अपने आप विस्तार को संकीर्ण करना सीख जाएंगे। और दूसरी जो पावर आती है वो पावर टू पैकअप। आपको यहां आने पर मैसेज मिला होगा, यहां आने का मिला कितने दिन पहले जी? 3-4 दिन पहले। अभी हमने एक CISF में प्रोग्राम किया था, ट्रेनी टू ट्रेनर्स 15 डेज का। उसमें उन बच्चों ने हमें जो बातें बताई, सच में वंडरफुल बातें थी। कहते हैं रात को हमें मैसेज दिया कि सुबह आपको जाना है, अभी इतना भी नहीं पता कहां जाना है, ये जगह कहां है, बहरोड है कहां, पढ़ने में बहरोड आ रहा है, ये किधर पड़ता है, फिर राजस्थान, अब राजस्थान में कहां। तो हमारी ये फौज का एक नियम है, ऑलवेज बी रेडी, ये इसका पार्ट है। आपका बैग बैगेज हमेशा हमेशा तैयार, कभी भी कुछ भी मैसेज मिले तो क्या, यस सर, हमारी यही तो एक लैंग्वेज है, यस सर, उसके अलावा तो हमें कुछ और आता नहीं। लेकिन बैग बैगेज में जो आप यहां पर आए हैं तो कितना सामान लाए हैं, पूरा घर? पूरा घर नहीं, कितना लिमिट का कि भाई 3 दिन रहना है 4 दिन रहना है, बस 4 ड्रेस लिया, थोड़ा सा ये लिया, और सफर में जितना हम हल्के होकर चलेंगे उतना सफर का आनंद ले सकेंगे। सत्य बात है ना? अब जरा जिंदगी के सफर में देखें, इस पिक्चर के अंदर कितना आनंद लेके चल रहे हैं। एक सूटकेस तो हमारी नेगेटिविटी की भरी हुई है, जैसा कल भी हमने कहा था कि रामलाल अगर ऑफिस में होके आ गया तो निश्चित तौर पर उसने जरूर मेरे लिए ही कुछ कहा होगा, तभी साहब ने। तो ये नेगेटिविटी की जो सूटकेस हमने भर रखी है उससे किसको फायदा या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और खुद के साथ साथ जो जो हमारे साथ कुलीग्स हैं या हमारे घर के हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। साथ में एक और बढ़िया सूट के सामने, बढ़िया वाली जिस पर गोदरेज का ताला लगा के रखते हैं, वो कौन सा पता है? कौन सी? दूसरों की मिस्टेक्स इतनी जल्दी हम पकड़ते हैं और दूसरों को कहते हैं मालूम है तुझे, तूने एक चीज नोटिस की, तुमने एक चीज देखी उसके अंदर क्या तुम गए, तुमने क्या देखा। मतलब मिस्टेक्स को तो हम ऐसे पकड़ते हैं जैसे कोई बहुत बढ़िया चीज है और याद भी रखते हैं और समय आने पर बताते भी हैं। तो ये सूटकेस, इसके साथ साथ एक और वो है एक्सपेक्टेशंस। हमने उम्मीदें बना रखी हैं हर अपने छोटे वाले से, बॉस ने हमारे से और हमने अपने से छोटे वालों से, अपने साथियों से, अपने फैमिली मेंबर से। अभी जरूरी तो नहीं है सब आपके जैसे हो सके, आपकी जितनी एनर्जी आपके साथ वालों की एनर्जी वैसी ही हो, जैसे आपका थिंकिंग लेवल है जरूरी तो नहीं वैसा ही उनका हो। अगर सबका एक जैसा होता तो ये संसार में विविधताएं ही न होती। और उसके साथ साथ अपनी गलतियों को भी एक गिल्ट के रूप में हमने बांध रखी है, नहीं मैं तो हूं ही ऐसा, मुझे मालूम है मैं हाइपर हूं। देखो कितना जल्दी क्या स्वीकार किया है कि हाँ मैं हाइपर हूं। कोई झूठ बोलता है ना, बस फिर मेरे बर्दाश्त नहीं। अरे उसका एक काम है झूठ बोलना, आपका दूसरा काम है। आप उसकी वजह से अपना जो बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं और एक बीमारी को क्यों ला रहे हैं, फिर उस बीमारी की दवा लेंगे, फिर दवा के साथ साथ और दूसरी बीमारियां लगेंगी, फिर लास्ट बढ़िया वाले हॉस्पिटल में जाकर क्या कहेंगे, हा एक डायलॉग था ना, सुना होगा ना, अभी एक मूवी में अंदर आया था, और लास्ट है पास्ट की बातें। तो क्या करना चाहिए, जितना हो सके इस जीवन के सफर को, कितनी सुंदर लाइन है, जिंदगी एक सफर, बोलें जोर से, यहां कल क्या हो किसने जाना। और उसके आगे जो हमारी इस मिलिट्री लाइफ में सबसे ज्यादा जो है रिस्क वो क्या है, डर कौन सा है लाइफ में, हाँ वो कुछ भी शब्द को लास्ट में ले जाओ, एंड कहां पर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, फियर ऑफ डेथ, एक लास्ट टू लास्ट वही तो है डर। तो वो गीतकार इस गीत के अंदर कहता है कि मौत आनी है आएगी एक दिन, और जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहां कल क्या हो किसने जाना। जबकि वो उस किरदार में फौजी नहीं है, पर हमारे लिए बहुत बड़ा जीवन का एक मैसेज दिया। और जो यहां से हल्का है वो ऑलवेज अवेलेबल है, नहीं तो आप यहां से भारी हैं, पहले 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी देख करके आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फौज में टाइम का तो कुछ, ड्यूटी का कुछ नहीं है, कभी भी एक ड्यूटी के बाद दूसरी ड्यूटी पर तुरंत भी चढ़ा देते हैं, ऐसा ही होता है ना कि अभी आप किया, अभी बोला अभी यहां और करिए, वो नहीं पहुंचेगा तुम्हें ड्यूटी पे रहना है, वो कुछ नहीं कहता, यस सर, अंदर से है ना। पर अगर वो अंदर से इस चीज को एक्सेप्ट कर ले तो हमारे यहां एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है वो है छुट्टियों की, क्योंकि उस दौरान मैंने बताया हमने बात की गहराई से, जो CISF ट्रेनिंग के दौरान बताया, उस दौरान हमने पूछा भी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बोला जी छुट्टियां नहीं मिलती, ये सच है, जोर से बोले, जो जो समझते हैं हाथ ऊपर कीजिए, बड़े वाला हाथ ऊपर कीजिए, कोई बात नहीं, मैं भी एग्री हूं, हाथ ऊपर तो कीजिए, इस बहाने एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अच्छा, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, एक बार सहारा छोड़ के दोनों हाथ ऊपर कीजिए, टच के लिए आसमान को छू लीजिए। सच्ची तो कह रहे हैं कि छुट्टियां नहीं मिलती, तो छुट्टियां नहीं मिलती हैं क्या? टाइम पर नहीं मिलती है, बस ये कहो कि जब हम चाहते हैं उस समय नहीं मिल पाती। आगे पीछे छुट्टियां तो जितनी फिक्स है आपकी, वो आपको मिलती ही मिलती है। तो थोड़ा सा इसको चेंज करें। अब जब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अब नहीं तो तब मिल जाएगी, फिर हमें परेशानी थोड़ी कम होगी, और इससे क्या होगा, हम इजी अवेलेबल होंगे। और जब इजी अवेलेबल होंगे अपने साथियों के साथ, घरकों के साथ, तो हमारा रिलेशन कैसा होगा? नेचुरल अच्छा होगा। इसलिए जितना हो सके मन मस्तिष्क से हल्का रहने का प्रयास करें। और तीसरी पावर जो आप सब में सबसे ज्यादा है, उसके लिए आप अपने लिए ताली भी बजा सकते हैं, अच्छे से ताली बजा सकते हैं, बजे बजे। वो ब्रदर बहुत स्मार्ट है, वो कहते पहले मुझे बात बताओ तब ताली बजाऊंगा। खुश भी कंडीशनल, हैप्पीनेस भी कंडीशनल, पहले टेल मी व्हाट्स द रीजन व्हाई आई विल क्लैप। पावर ऑफ टॉलरेंस, सर्दी गर्मी, हम कई बार कहते हैं -50 से +50 तक की कैपेसिटी अगर किसी में है तो वो आप में है, आप में है, आप में है। संसार में शायद ही किसी के पास होगी। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इतनी विविधता भी नहीं है जो केवल हमारे पास है। इसमें एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है वृक्ष का, जिस पर आम लगे हुए हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, उस वृक्ष को पत्थर मार रहे हैं, और बदले में वृक्ष क्या दे रहा है, फल दे रहा है। जिसके पास जो होगा वही तो वो देगा। फल वाला वृक्ष झुक जाता है। झुकना जीवन की शान है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान है। क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं? बोला मैं फौजी हूं, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मैं झुक नहीं सकता। ऐसा नहीं, झुकना तो हमारी शान है, जिंदगी की शान है, हमारी भारतीय संस्कृति है। इसीलिए तो हमारे यहाँ बच्चों को पैर छूने की प्रथा सिखाई जाती है बचपन से, कि सुबह उठो तो अपने पेरेंट्स को चरण स्पर्श करो ताकि वो झुकना सीखे। हर जगह अकड़ करके चलना भी नुकसानदायक है। अभी छोटी दीवार हो और हमें तो भाई अकड़ के चलना ही आता है, तो क्या होगा, सिर जाकर के लगेगा, वहां झुक करके भी चलना है। इसीलिए तो हर्डल रेस का है जिंदगी को। जिंदगी कोई आसान थोड़ी है, बहुत कुछ अपना पेमेंट मांगती है। इसके लिए एक बहुत सुंदर सी बात कही कि एक बार कुछ लोग महात्मा बुद्ध के पास गए, और जाकर के कुछ कुछ, क्योंकि वो यंग बच्चे थे और उन्होंने सुना कि एक और कोई ऐसा व्यक्ति आया जो अलग तरह की बात कहता है, तो जब जब कोई नई चीज आई उसका विरोध हुआ है संसार में, ये सत्य है। फिर उन्होंने जाकर के महात्मा बुद्ध को कई देर तक अब्यूज करने लग गए, अपशब्द कहने लग गए, बहुत कुछ बोलने लगे, और महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत। जब कई देर हो गई तो घर में भी अगर साथ वाला कुछ ना बोले तो, अभी आप यहां से जाओ और जाने के बाद ओम शांति के पाठ को अप्लाई करें और ज्यादा ना बोले मैडम गुस्सा करे तो भी, तो वो क्या कहेंगे? आर यू नॉर्मल? कुछ हो तो नहीं गया? क्या हो गए वहां जाके? इससे तो पहले ही ठीक थे, लड़ते तो थे बराबर के हम मिल करके, तो क्या हुआ? अब उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई नहीं किया तो लास्ट जब बोल करके पूरा हुआ, थक गए, तब उन्होंने पूछा कि इतनी देर तक हमने आपको बोला, क्या आपने सुना नहीं? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? हो सकता है? कान है तो साफ सुनाई तो देगा, ये लाफ नेचर है। बोला ऐसा नहीं है, मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे सुनाई दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आपको हमारी बात समझ नहीं आई? भाई अगर आप मेरे सामने मलयालम में उड़िया में कुछ बोलो तो मुझे समझ नहीं आएगी, तो मेरे तरफ से आप कुछ भी बोलो। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे समझ भी आया आपने क्या बोला। तो बोला फिर आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया, उसका उत्तर क्यों नहीं दिया? बोला तुम्हारे पास जो था वो तुमने दिया, मेरे पास जो था, मेरे पास शांति है, मैंने तुम्हें शांति दी। अब तुम शांत हो गए हो या नहीं हो गए हो? बोल बोल करके भी लास्ट शांत हो गए। तो जिसके पास जो होगा वही देगा। आपके पास पेन है? अभी पेन है किसी के पास? नोटबुक पेन किन किन के पास है? हाथ ऊपर कीजिए। पेन निकाल करके कीजिए, पेन ऐसे हाथ में रखिए। अच्छा चलिए, आप ये समझते हैं कि दीदी, हाथ ऊपर ही रखिए ना, भूल गए आप, अभी तो हमने कहा ही नहीं नीचे करी। और जिन्होंने नहीं कुछ हाथ ऊपर किया उनसे दो हाथ ऊपर करवाते हैं। अच्छा आप ये चाहते हैं कि दीदी को पेन देना चाहते हैं आप, कि चलो दीदी आपने अच्छा बोला, आपको ये एक पेन गिफ्ट करते हैं। ओके चाहोगे कि नहीं? थोड़ी देर के लिए नहीं? बोले क्यों ऐसा? नहीं ना, चाहते हैं पेन देना, लेकिन मैं अगर लेती नहीं हूं थैंक यू कह के कि अभी मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास है, तो वो पेन किसके किसके पास रहेगा? जिनका था उन्हीं का उनके पास रह जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुमने मुझे जो भी अपशब्द देने चाहे, मैंने लिए नहीं तो तुम्हारे शब्द तुम्हारे पास। सोच के देखें। तो ये सहन करना तब तक ही है जब हम इसे सहन करना समझते हैं। साहब ने कुछ कह दिया, हम चैम्बर में गए, मेरे से ऊपर जो भी सीनियर है उन्होंने मुझे कुछ कह दिया। दो बातें हैं, या तो मैंने गलती की है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। अगर मैंने मिस्टेक की है और सर ने मुझे डांट दिया या कुछ कह दिया, इट्स ओके। और अगर गलती नहीं की और फिर कह दिया तो क्या होगा? चलिए अब बताइए जी, प्रैक्टिकल बताना जी। बाहर तो बोल नहीं सकते, बाहर तो फिर भी यस सर ही करना है ना, है ना, बाहर तो कह नहीं सकते, साहब को कैसे कहे। पर अंदर की जो मधानी चल रही है वहां पर एक बात सोच ले कि जब मैंने किया नहीं तो ये बात भी मेरे लिए नहीं, तो ये सर की बात कहना मत, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। पर समझ लेना कि जिनकी बात उनकी उनके पास। तो सहन दो ही बातों पर कर सकते हैं और दो ही रीजन है। अगर इस शक्ति को डेवलप करना है एज ए पावर, अगर हमने मजबूरी के तौर पर कर रहे हैं तो वो सहन शक्ति नहीं है, वो बेबसी है, इस बात का ध्यान रखना। तो बेबसी से चाहते हैं या मजबूती से चाहते हैं? मजबूरी से नहीं, मजबूती से। मजबूती के लिए एक ही चीज, पहला अगर आपको उनसे प्रेम है, जिसको जिससे प्यार होता है उसकी हर बात के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपको अपने बच्चे से प्यार है तो अगर उसकी तबीयत, आप दो ड्यूटी देकर के भी आए हैं और अगर उसकी तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के नहीं ले जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, कहेंगे मुझे सोना है, अब इरिटेट होंगे, अब गुस्सा करेंगे, अरे तुझे भी अभी बीमार होना होता है, ऐसा बोलेंगे नहीं, पहले भी नहीं, अपने बच्चे के लिए शायद नहीं बोला होगा। ओके, अब नहीं बोलेंगे, मन से भी नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो बहुत सुंदर सेंटेंस है, या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। और दूसरा जिसमें दया भाव होगा, जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़ाया गया, कितनी यातनाएं दी गई, उसके बावजूद जाते जाते क्या कह के गए कि परमात्मा इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, आप इनको माफ कर देना, जिंदगी को कुछ इस तरह से मैंने आसान बना लिया, जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान बना लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, किसी को माफ कर दिया। ये एक सच्ची बात बता रहे हैं, प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। जिसके भी साथ आपकी नहीं बन रही, जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं और यहां पर उसको देखते ही आपको इरिटेशन हो रही है, कोई ऐसी तस्वीर जिनकी भी हो एक बार आप अपने मन के आगे लाएं, जिसको देखते ही आपको इरिटेशन होती है, परेशानी होती है, आज से आप एक बार दिन में परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर, क्योंकि जज तो वही है ना, उनको अपने आगे रख के उस आत्मा से आप माफी मांगना शुरू करें। आमने सामने नहीं, हो सकता आमने सामने मांगने से तो उसमें कहीं ईगो आता है या कुछ भी है, लेकिन आप दिल से उस आत्मा से माफी मांगे और कंटिन्यूसली कई दिन तक देखना, आपका कार्मिक अकाउंट हल्का होने लग जाएगा। वो आपके संपर्क में क्यों आई, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का उसका और आपका हिसाब किताब था, और उस हिसाब किताब को पूरा करवाने के लिए, अपना बैलेंस लेने के लिए वो सोल आपके रिलेशन में एज ए बॉस, एज ए कुलीग, एज ए सबोर्डिनेट, एज ए लाइफ पार्टनर, फैमिली मेंबर, कुछ भी बन करके आए होंगे, तभी वो आपसे अपना हिसाब मांग रहे हैं। बेहतर है दिल से उस आत्मा से माफी मांगे कि मेरा किसी भी जन्म में आपके साथ कोई हिसाब किताब है, तो प्लीज फॉरगिव मी। और दूसरा, आप माफ करना सीखें, और ये हमें मेडिटेशन पावर देती है। हम बहुत बार माफ करते होंगे, आप सबको तजुर्बा होगा जिंदगी में माफ करने का, कभी किया है, यस और नो, हाँ या ना, सब नहीं बोल रहे, किया है? सभी ने किया होगा। अच्छा, जिन जिन ने किया है वो हाथ ऊपर करे, कभी ऐसा कोई नहीं हो सकता, सर माफ नहीं किया, कभी किया होगा, हाथ नहीं उठाया, सभी ने हाथ उठाया, एक बार फिर से हाथ उठाना, और नहीं तो अपने बच्चों को किया होगा हजारों बार, इतना सोच रहे थे कि पता नहीं मैंने माफ किया या नहीं किया, बच्चों को हजारों बार किया होगा, लाइफ पार्टनर की बात नहीं अच्छी लगी फिर भी चल छोड़ना, ये माफ करना ही तो है, नहीं तो कोई बाहर का कह के देखे फिर देखना, है कि नहीं? तो माफ तो कर देते हैं, माफ करने के लिए एक छोटी सी बात, तुम परवाह करनी छोड़ दो। देखो कितनी सुंदर कोटेशन लिखी है, तुम परवाह करनी छोड़ दो, लोग हर्ट करना छोड़ देंगे, दिल दुखाना छोड़ देंगे, लगेगा इनका तो दिल दुखता ही नहीं, अब क्या करें। और इसके साथ एक और कनेक्टिविटी की पावर है, वो है पावर ऑफ एडजस्टमेंट, समाने की शक्ति। एक एग्जांपल दे रही हूं आपको, बड़ा ध्यान से सभी सुनिएगा और उसका आंसर दीजिएगा। आप आज जिस पोस्ट पर हैं, सभी बिल्कुल प्रैक्टिकल रेलिवेंट एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू, आज आप जिस पोस्ट पर हैं, आपका साथी सेम एक रैंक पर कई होते हैं ना, अलग अलग, आपका साथी से कोई मिस्टेक हो गई और वो मिस्टेक प्रूफ सहित आपके हाथ में है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके साथी से मिस्टेक हो गई और वो मिस्टेक आपके हाथ में विद प्रूफ है। अब आप चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, पनिश करवा सकते हैं, जॉब से तो डिसमिस होगा ही होगा और सब। वो आपके पास आता है और आके कहता है कि मुझे मालूम है मुझसे गलती हुई है, मुझे ये भी मालूम है कि आपके पास मेरे सबूत है और मुझे ये भी मालूम है कि इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में है पर मैं तुमसे माफी मांगता हूं, चाहो तो माफ कर दो, चाहो तो कुछ भी कर दो, मेरे बच्चों की तरफ देखो। ओके, अब आपके दिल में क्या आ रही है, अच्छे से बोले, सभी बोले, आपके दिल में क्या है, ये सिचुएशन में क्रिएट होते ही आपके दिल में क्या आ रही है, आप क्या करोगे, फिर भी कहोगे कि नहीं मैं तो सबूत पेश ही करूंगा, क्या करोगे, माफ कर दोगे। वो कहता है मुझे बस वो सबूत दे दो, आप क्या करोगे, छोड़ो, जा तुझे, जोर से तो बोले, जा तुझे माफ किया, अपने वो पेपर लिए और बोल अब तो खुश, तुम्हारे सामने सबूत को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज आपको क्या मिल रहा है, अंदर अंदर क्या मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, बड़ा जर्फ किया, दिल को बड़ा किया, तो आज आपको एक सुकून है, खुशी है, शांति है, है? अब 5 साल के बाद, अब यहां ध्यान से सुनिए, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई, 5 साल के बाद प्रमोशन का केस जाता है, आपका भी जा रहा है और उसका भी जा रहा है, उसने अपना जैक लगा दिया, क्या किया, नेचुरल है वो आपसे एक स्टेप पहले आगे चला जाता है। अब आपको क्या आ रहा है दिल में, सच सच बोलो, गुस्सा आ रहा है, अब आपके दिल में क्या आ रहा है, सच बोलो, सच बोलो, वेरी गुड, और बोलो, प्लीज बोलो, जी बोलिए, है गद्दारी किया, है ना, ये था ही ऐसा ही, इसकी फितरत उस बिच्छू की तरह, मुझे पहले ही सचेत हो जाना चाहिए था, मुझे उस दिन इसको माफ ही, जोर से बोलो, देखो माफ करके भी यहां से नहीं हटाया ना, माफ भी किया है, और यहाँ से हटाया भी नहीं है। नहीं तो हमारे तो संस्कृति में था, हमारे पूर्वज कह के गए थे नेकी कर और दरिया में डाल। कभी कहा था कि नेकी कर और पॉकेट में डाल, नेकी कर और यहां रख, कहा था? कभी नहीं कहा। इसीलिए इसकी तुलना सागर से की गई है कि पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, अगर हमने उस बात को एक बार पूरा कर दिया तो उसको सदा, अगर वो ना होता, कोई और आपका साथी होता और वो जेट लेकर के एक कदम आगे बढ़ जाता तो आपको ये बात याद आती? फिर क्यों नहीं तकलीफ होती? मेरा इंक्रीमेंट 500 रुपए लगा, मैं बहुत खुश, सबको बता रहा, पार्टी दे रहा, लेकिन मेरे फ्रेंड का 700 रुपए लग गया। अब वो बर्फी मुझे नमकीन लग रही है, वेरी नेचुरल। अब वो मुझसे खाई नहीं जा रही, क्यों? अभी तक तो आप खुश थे, क्योंकि जहां तक मुझे अपना पता था वहां तक मैं खुश। इसलिए कहते हैं धरती जैसा धीर और सागर जैसा नीर, इतना विशाल हृदय। जब पेड़ अपना फल नहीं खाते, नदियां अपना जल नहीं पीती, तो हमने क्षमा करके कैसे वापस उसको रिकॉल कर सकते हैं? अगर माफ कर दिया तो फिर सदा के लिए माफ कर दिया, वो कोई रीजन ना हो। क्लियर? क्लियर हो सकता है? कोशिश करने वालों की कभी जोर से बोलें, हार नहीं, पूरा बोलें। कोशिश लगता करेंगे नहीं तभी जोर से नहीं बोल रहे, सभी बोले। और बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती। हम सोचे हमारी वाह वाह भी हो, सब कहें कि ये नंबर वन है, और हम कुछ करें भी नहीं, ऐसा तो साफ हो नहीं सकता। पर हमारी इस मिलिट्री लाइफ में एक सबसे बड़ी बात है जो मुझे सुनने को आपस में मिली, जो प्रैक्टिकल भी देखा, कि लोगों से धोखा बहुत जल्दी मिलता है। हम दिल के बड़े अच्छे, कोई रिलेटिव हमसे पैसा मांग लेता है तो दे देते हैं, कोई किसी की हेल्प करनी होती है तो करते हैं, पर जब हमें जरूरत पड़ती है उस समय लोग क्या करते हैं? थोड़ी सी आंख फेर लेते हैं, है ना? फिर धोखा होता है, फिर दिल को तकलीफ होती है कि हमने इतना किया और बदले में हमें क्या मिला। तो एक चीज ध्यान करें, यह है परखने की शक्ति। यहां डेवलप करनी है, यहां आंख पे पट्टी नहीं बांधनी। एक जगह कहा है कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं। ये तो सब हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी मान करके फिर चलना। फिर अगर आपको दया करनी है तो अपने उस लेवल पर दया करो कि उसके बदले में एक्सपेक्टेशन ना करो। और अगर एक्सपेक्ट करके दया कर रहे हो कि आज मैं हेल्प कर रहा हूं कल ये मुझे करे, तो कोई गारंटी नहीं है। और पैसा तो चीज ही ऐसी है, जिसके पास जाता है उसी का हो जाता है। तो परखने की शक्ति कि क्या सही है और क्या गलत है। एक जौहरी का एग्जांपल बहुत सुंदर है। यहां एक आपको छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, उसको ध्यान से देखना, उसमें कुछ रिंग्स घूम रही हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये बताना कि ये जो उसमें गोल डॉट्स हैं, ये गोल गोल घूम रहे हैं या सीधे घूम रहे हैं, ठीक है? दिखाई दे रहे हैं? क्या लगा था, ये गोल गोल है या सीधे सीधे है? गोल गोल है ना, जो डॉट्स थे और जो डॉट्स थे वो गोल घूम रहे। एक बार फिर से देखें, फिर से देखें, ध्यान से देखिए। साउंड नहीं आ रहा, सीधे एक सिंगल डॉट है। फिर से ध्यान से देखिए, अगर आपने देखा हुआ है तो या वैसे बता रहे हो? अब ध्यान से देखिए, इसका साउंड पॉसिबल है? आवाज माइक के आंधी से ओके क्लियर हुआ? देखिए कैसे एक एक रो में चल रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम देखते ही क्या लगा था? तो ये जरूरी नहीं जो दिखता है वो बिकता है। अक्सर तो लोग ऐसा ही कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, पर ऐसा है नहीं। थैंक यू, यहां रख दीजिएगा, ऑन कर लेंगे नेक्स्ट में जब जरूरत। चलिए, परखने के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। अगर हमने सही परख लिया, और परखने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। अगर मन पानी ऐसे ऐसे हिल रहा हो तो क्या होगा? हम देख नहीं सकते कि उसके अंदर क्या है, लेकिन अगर ठहरा पानी है तो हम जांच सकते हैं। तो यदि हमारा मन भी ठहरा पानी है, शांत है, तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं। और यदि मन ही शांत नहीं है तो हम पूछेंगे चार लोगों से, ऐसा करूं क्या, ऐसा कर लूं तो, ऐसा होना चाहिए या नहीं। फिर कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, फिर और कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी और इस तरीके से हम अपना डिसीजन नहीं ले सकेंगे। देखो नेपोलियन सभी जानते, उसने कहा कि जिंदगी में 6 दिन भी खुशी के नहीं है, ये उसकी जीवन की एक स्टेटमेंट है। और एक ऐसी लेडी जो ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, अपनी जिंदगी की एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट देती है, आई हैव फाउंड लाइफ सो ब्यूटीफुल। कैसे दिया डिसीजन? मन की आत्मा से। ये हमारा नजरिया है कि हम कैसे डिसीजन लेने के लिए डीप थिंकिंग, ये बहुत गहन चिंतन सोचना बहुत जरूरी है। और 7th पावर हमारे पास है, पावर टू फेस। हम सबके लिए है कि नहीं? अभी आप सोच के देखें, हमारे देश में इतना बड़ा डिसीजन हुआ, क्या उनको फेस नहीं करना पड़ रहा, या आप लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा और पड़ रहा है, परंतु उनके पास पावर थी, और पावर केवल बाहर की सत्ता की पावर नहीं, जहां से हमने शुरू की थी वो थी विल पावर, अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति। एक लंबे समय से एक इच्छा शक्ति हमें किस मुकाम पर ले जाती है कि जब हमारे ऊपर आसमान से गोलियां बरस रही थी, हम धरती पे थे, तो भी हमने जीत पाई। कुछ एक दो ही एग्जांपल लिए हैं, जानते हनुमत थप्पा, एक सप्ताह सियाचिन की बर्फ के अंदर रह करके भी हम तुम्हें बचा नहीं पाए, पर तुम हमारे लिए लड़े तो थे, वहां मौत से अड़े तो थे, हमारे लिए खड़े तो थे, ठीक ही नहीं? दूसरा एग्जाम्पल जो प्रेजेंट में भी है, कितनी गोलियां सिर से लेकर दोनों हाथ, दोनों पैर, पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, सब में गोलियां, उसके बावजूद क्या रहा? जाते जाते ये, और फिर पत्थरबाजों ने पत्थर बरसाए, तब भी जाते जाते कहा मैं मेरी ड्यूटी पर वापस आऊंगा। और ड्यूटी पर वापस हैं आज भी, ताली बजा सकते हैं। ये है पावर टू फेस। कोमा में जाने से पहले कह के चले गए, एम्स में सब डॉक्टर्स ने कह दिया कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी उस आत्मा का खुद की विल पावर, पावर टू फेस। ये तो एक दो एग्जाम्पल है, हमारे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिनके लिए हम कह सकते हैं कि हम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। परंतु होता क्या है कि गैरों में कहां दम था, हमें तो हम यहां आके मारे जाते हैं। हम बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत आते हैं और घर की छोटी सी बात पर लड़ पड़ते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वहीं पर स्टार्ट हो जाते हैं और वहां आकर के जितनी एनर्जी थी वो सारी आके लॉस हो जाती है। तो जहां जरूरत चाहिए प्रेम की, संतोष की, केयरिंग शेयरिंग की, वहां हम अपनी छोटी छोटी बातों पर एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमें ये बचा करके रखनी है बॉर्डर के लिए, बुरे वक्त के लिए, रेस्क्यू के लिए। और लास्ट में जो आपकी बदौलत पूरा आज हिंदुस्तान बचा है वो है पावर ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति। कहीं भी देश के अंदर कुछ भी, आज आधा भारत पानी में हो रहा है, उसमें कौन बचा रहा है? आप सभी तो बचा रहे हैं। तो ये पावर ऑफ कोऑपरेशन, हमारा इतिहास गवाह है, तारीख बोलती है। अगर हम हमारे पूर्वज देवी देवताओं से भी ले लें तो गोवर्धन पर्वत केवल श्री कृष्ण ने नहीं, सबने, ग्वाल बाल ने भी अपनी अपनी अंगुली लगाई है। अगर हम सब मिलकर के चाहें तो क्या नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। कोई हो या ना हो, मैं पॉसिबल हूं, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। लिखिए अपनी अपनी डायरी में सभी, आई एम पॉसिबल, अपनी अपनी उस पर लिख देना। वो कौन सी एक फिल्म थी आमिर खान की, बोलो उसका डायलॉग, बोलो जोर से बोलो। और कल हमने कहा था अपने आप को शाबाशी दो, निकाले सभी दोनों हाथ और बढ़िया से कहें आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, अच्छे से जोर से आवाज आनी चाहिए। आप शायद आवाज ना सुन पाए, आवाज नहीं आ रही। ध्यान से देखिएगा इसको, हमारे यहाँ तो देवी देवताओं से लेकर के अगर छोटे छोटे जीव जंतु तक को भी देख लें, तो हम तो सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं मानव, और हमारे में सदा से सहयोग की भावना रही है। सहयोग का अर्थ ही है सहजता से दूसरे के साथ योग, अर्थात उनको सहयोग देना। तो हमने आज 8 शक्तियों का आप सबके साथ जिक्र किया है। पहला था अपने आप को विस्तार से संकीर्ण करना, जो खुद को धारण करनी है वो लिसनिंग पावर। सेकंड, ऑलवेज अवेलेबल, फिर टॉलरेंस, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी, हर हाल में फ्लेक्सिबल। ये हमको खुद में धारण करनी है। और अगली जो 4 है वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन में जब आते हैं तब चाहिए, वो है परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, सामना करने की शक्ति, दुख सुख मान हानि निंदा स्तुति। कैसी भी परिस्थिति तो परिस्थिति है, पराई स्थिति है, वो आ सकती है। और लास्ट है टीम स्पिरिट। हमारी फौज किस पर चलती है? कोई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम अपने बच्चों को सिखाया करते थे स्कूल के अंदर और सीखते हैं, तो हमारी टीम, चाहे वो खेल का मैदान हो या जंग का मैदान हो या घर की बात हो, टीम भावना हमारी मिलजुल कर के साथ चलने की। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है उस सुपर पावर से खुद को जोड़ना, तब हमारे अंदर ये शक्तियों का प्रवाह निरंतर हो सकता है। तो चले हम सभी थोड़ी देर के लिए उस जगत नियंता से कनेक्ट होते हैं। एक बार गहरी लंबी सांस ले लें, अपना मन बनाएं कि आज मुझे उस जगत नियंता से जो परम शक्ति है, शक्ति का स्रोत, परमपिता परमात्मा, उसने मुझ आत्मा में भी असंख्य शक्तियां भरकर भेजा है। मैं आत्मा जो शक्ति स्वरूप हूं, जिसमें सहन शक्ति है, बाहरी कैसी भी परिस्थिति हो पर मेरे मन की स्थिति सदा अचल और अडोल, एक रस रहने वाली है। जगत की कैसी भी बातें आ जाएं, मेरा हृदय उस विशाल सागर की तरह है जो सब कुछ खुद में समा सकता है। परमात्मा ने मुझे सद्बुद्धि दी है। सही और गलत के निर्णय की, मैं आत्मा पारस बनकर सही परख कर सही समय पर सही निर्णय कर सकने वाली सद्बुद्धि दाता परमात्मा की संतान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। कैसी भी परिस्थिति हो, उसका सामना करना और सबके साथ एक ही विश्वास के साथ सबके सहयोग से मेरा घर परिवार और कार्यस्थल सबसे सुंदर सबसे उत्तम सबसे अच्छा है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। आठों शक्तियां मुझ में निरंतर प्रवाहित हो रही है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। Mm-hmm.